आप में से कौन नियमित रूप से मंदिर में आते हैं शाम को, गीता क्लास जो हो रहा है इसमें, और कौन रविवार को केवल आए हैं आज? हा? आज पहले बार कौन कौन आए हैं, हाथ उठाए? ओ अच्छा, इनसे बहुत आदमी पहले बार आए हैं, अच्छा, हरे कृष्णा। और वैसे आप में से कौन कौन रविवार को केवल आते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, हरे कृष्णा। मैं पूछा क्योंकि उसके अनुसार मैं जो आज मेरा क्लास या कहना जो है उसको विचार करेंगे। जो पहली बार आए हैं उनके लिए ये गीता क्लास, क्योंकि आज जो हो रहा है भगवद गीता का अष्टम अध्याय का 12-21 नंबर श्लोक, तो उसका पहले जो कुछ हो चुका है वो तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वैसे मैं कोशिश करूंगा साधारण रूप से, और अच्छा पहले तो मैं ये पूछूंगा आपको, आपके किसके पास मोबाइल फोन है, हाथ उठाइए जिनके पास है, बस केवल, और हाथ उठाइए, शर्माने का कोई बात नहीं, जिनके पास है। हाँ, कृपा करके मोबाइल फोन बंद कर दीजिएगा, नहीं तो साइलेंट मोड में रख लीजिए ताकि फोन अगर आया तो पता चलेगा। हम यहाँ मंदिर जो हम बनाए हैं या बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ताकि आप लोग आकर भगवान को दर्शन कर सकते हैं। भगवान को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आप लोग मंदिर में आते हैं, है ना? आप में से कौन भगवान को दर्शन के लिए मंदिर में आए हैं, और आप में से कौन और कोई उद्देश्य लेकर मंदिर में आए हैं, और कोई दूसरा भगवान को दर्शन बिना और कोई उद्देश्य लेके, और कोई दूसरा उद्देश्य लेके आए हैं तो हाथ उठाइए। जो अच्छा, हाँ, मंदिर हम क्यों आते हैं, भगवान को दर्शन करने के लिए। कोई किसी ने मुझे प्रश्न किया था कुछ दिन पहले, स्वामी जी आप भगवान को दर्शन किए हैं, आप भगवान को देखे हैं? मैं इस प्रश्न के उत्तर में उनको बोला कि मैं भगवान को दर्शन किया या नहीं ये जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात यह है कि मैं आपको भगवान को दर्शन कराना सकता हूं, मैं भगवान को दर्शन किया या नहीं इससे आपको तो कुछ फायदा नहीं होगा, ना तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि भगवान का दर्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कोई अगर आपका अगर भूख लगा है तो दूसरा कोई व्यक्ति खाना खाया उससे क्या आपका पेट आपका भूख खुद भूख का निवृत्ति नहीं होगा। और भगवान का दर्शन का मतलब क्या है वो भी समझना है, तो मतलब ये है कि भगवान को हम दिखाना सकते हैं। मेरा गुरुजी की कृपा से हाँ हमें भगवान का दर्शन हुआ है, और उस कारण हमें भी पता है कि कैसे आपको भी भगवान को दर्शन कराना सकते हैं। भगवान है, भगवान है, भगवान केवल है ही नहीं, भगवान आप सबके हृदय में विराजमान है। हर प्राणी के हृदय में भगवान विराजमान है। यद्यपि भगवान हमारा हृदय में विराजमान है, फिर भी हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा दर्शन जो होता है वो आंखों के द्वारा होता है। आंखों के द्वारा जो दर्शन, आंखों के द्वारा हम केवल भौतिक वस्तु का ही दर्शन कर सकते हैं, परंतु और सारे भौतिक वस्तु भी हैं जो हम आंखों के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे वायु है, हवा है, यह आप जानते हैं कि हवा है, परंतु हवा को तो आप आंखों के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते हैं, परंतु स्पर्श के द्वारा आंखों का, हवा का अनुभूति होता है। जब हवा जब बहती है तो हमें स्पर्श के द्वारा उसका अनुभव होता है। अग्नि, वायु, ऐसे पांच पंच महाभूत हैं, मिट्टी, पानी मतलब कठिन वस्तु, पानी मतलब तरल वस्तु, अग्नि, वायु और आकाश, ये है पंच महाभूत। कठिन वस्तु को हम दर्शन कर सकते हैं, जैसे ये एक कठिन वस्तु है, ये कठिन वस्तु है, हमारा शरीर कठिन वस्तु है, मिट्टी दर्शन होता है, पानी का दर्शन होता है, आग का भी दर्शन होता है, परंतु वायु का दर्शन नहीं होता है। वायु का स्पर्श के द्वारा वायु का अनुभूति होता है। वायु से भी परे हैं आकाश, आकाश का भी दर्शन नहीं होता है, और आकाश का परे है मन, उसके परे है बुद्धि, और उसके भी परे हैं अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन वस्तु भौतिक हैं, भौतिक वस्तु हैं, परंतु ये सूक्ष्म हैं, और उसके भी परे है आत्मा। आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा चिन्मय है। जड़ वस्तु जो है, भौतिक जड़ वस्तु पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, ये भौतिक है, पंचभूत का ये भौतिक जगत का वस्तु है, परंतु आत्मा जो है वो इस भौतिक जगत का नहीं है। इस भौतिक जगत के परे जो चिन्मय जगत है, आत्मा उस चिन्मय जगत या भगवत धाम से आत्मा आए हैं। हम सब असल में और कहां, कहीं से आए हैं, और किसी जगह से आए हैं। वो जगह कौन है? वो जगह है आध्यात्मिक जगत, चिन्मय भगवान की धाम। तो उस जगत का जो खबर जो है, उस जगत का जो जो विषय का जो ज्ञान है, उसको प्राप्त होना संभव होता है आध्यात्मिक प्रयास के द्वारा। जैसे आजकल का स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा मिल रहा है, वो कौन सी शिक्षा मिल रहा है, जो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सारे भौतिक जगत का सब्जेक्ट है। ऐसा कोई स्कूल है जहाँ आध्यात्मिक जगत का ज्ञान दिया जाता है? है क्या? या क्या आपका स्कूल या कॉलेज में उस जगत का ज्ञान आपको मिला है? कहीं भी मिला है किसी को? नहीं। उस जगत के जो ज्ञान है, उस ज्ञान प्रदान करने के लिए हमारे ये संस्था है, इस्कॉन या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये इस्कॉन एक स्कूल है, एक स्कूल है या एक यूनिवर्सिटी है, जिसका जो संस्था सारा दुनिया भर है, सारे देश में, सारे बहुत सारे शहर में, दुनिया भर हमारा 300 से भी अधिक केंद्र है। वो केंद्र में क्या शिक्षा दिया जाता है? इस विषय का, जिस विषय का ज्ञान और कहीं भी नहीं मिलता है, कोई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। तो इस विचार से इस्कॉन एक यूनिवर्सिटी है या स्कूल है या पाठशाला है, जहां एक विशेष विषय का शिक्षा मिलता है। यहाँ इसीलिए मैं जो पहले पूछा था आपको, किस उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए हैं? आप एक आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर यहाँ पर आए हैं, है ना? और वो विषय क्या है? भगवान को दर्शन, भगवान को दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसे तो भौतिक दृष्टि से भगवान का दर्शन हो रहा है, विग्रह मंदिर में भगवान का है, दर्शन हो रहा है, परंतु ये दर्शन किसको दर्शन हो रहा है ये भी समझना चाहिए। जिनको हम पूजा कर रहे हैं वो कौन है? हम तो ऐसे हर मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, हम क्यों विशेष रूप से इस रूप का पूजा कर रहे हैं? क्योंकि ये रूप भगवान का रूप है। मंदिर में जो जिसको आप देखने के लिए आए हैं वो कौन है? वो भगवान है। वो है या नहीं ये अब आपको विचार करना पड़ेगा। हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, और हम केवल क्या मूर्ति का, कोई मूर्ति का पूजा कर रहे हैं और कोई विशेष व्यक्ति का पूजा कर रहे हैं? जो व्यक्ति का पूजा हम कर रहे हैं वो कौन है? भगवान है। तब सवाल पैदा होता है, भगवान कौन है? उसके पहले ये भी सवाल पैदा हो सकता है, भगवान है या नहीं? बहुत सारे आदमी सोचते हैं कि भगवान नहीं है। विशेष रूप से आजकल के ज़माने में बहुत सारे आदमी नास्तिक हो गए हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। पर हमें विश्वास है कि आप सब भगवान को भी मानते हैं, भगवान है ये विश्वास करते हैं, तो इसलिए आप सब मंदिर में आए हैं। तो मेरा कहना है कि आप जब मंदिर में आते हैं या हमारे इस्कॉन संस्था के साथ आप जब युक्त होते हैं, तो ये विचार आपका मन में सही ढंग से रखना चाहिए कि एक विशेष उद्देश्य लेकर आप यहाँ आते हैं। क्योंकि एक विशेष उद्देश्य लेकर हम भी यहां आए हैं। आज इस्कॉन उज्जैन में क्यों आए हैं, हमारा यह संस्थान, हम यहां स्थापना क्यों किया है, एक विशेष उद्देश्य लेकर हम ये किया है, हम यहां आए हैं। और वो उद्देश्य क्या है, सबको भगवान के बारे में समझाने के लिए। जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं उनको भगवान के बारे में शिक्षा देने के लिए, भगवान के बारे में समझाने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि आप जब आते हैं आप सीरियसली यहां आना चाहिए, ऐसे मजाक करने के लिए या समय बिताने के लिए नहीं आना चाहिए। जैसे होता है बहुत सारे आदमी आते हैं, चलो देखा है ये इस्कॉन आया है या कुछ मंदिर बना रहे हैं, चलो उसका महानंदा नगर में एक उसका केंद्र, अस्थाई केंद्र स्थापन किया है, चलो देख के आते हैं। ठीक है आइए, परंतु जब आते हैं तो हमारा कहना ये है कि आप और भी नज़दीक आने का कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि हम क्यों यहाँ आए हैं। और जो मैं बता रहा था कि हम एक विशेष उद्देश्य लेकर यहाँ आए हैं कि हम भगवान के बारे में आपको समझाने के लिए आए हैं। भगवान के बारे में अगर आप समझ गए हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर भगवान के बारे में आप नहीं जानते हैं परंतु जानना चाहते हैं तो आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा बच्चे लोग को आप थोड़ा संभालिए, जो अगर बच्चे लोग यहाँ सुनने के लिए अगर नहीं आया तो बाहर जाओ, तुम बाहर जाके खेलो। ये मैं कह रहा था कि ये देखिए हम लोग बहुत सीरियस आदमी हैं, कोई बहुत सीरियस उद्देश्य लेकर हम यहाँ आए हैं। जैसे देखिए जब आप स्कूल में जाते हैं तो क्लास में कौन आता है, स्कूल का क्लास में जो शिक्षा प्राप्ति करने के लिए चाहता है वो आते हैं। हर व्यक्ति के क्लास में घुस जाते हैं, नहीं, क्यों नहीं, क्यों कि क्लास में ऐसे घुसने से तकलीफ होता है, जो शिक्षा दे रहे हैं उनका कुछ दिक्कत होता है सिखाने में। तो ठीक है, मैं अब आपको प्रश्न करूंगा, अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न है आप किसी को भगवान के बारे में जानने के लिए? कोई प्रश्न नहीं है, तो अगर आपका प्रश्न नहीं है तो मैं क्या बताइए। हाँ, क्या होना जरूरी है? भगवान के जानने के लिए को किसी भी विषय में जानने के लिए अनुसंधान का प्रश्न होता है। जैसे आपको पड़ोसान कोई आए हैं, नया आदमी आपको तो आप उनको जानना चाहते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि ऐसे कोई आदमी आए हैं तो जब देखते ये ऐसे किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनक्विजिटिवनेस, जानने का इच्छा। तो पहला प्रश्न है जो मैं पहले पूछा था, भगवान है या नहीं है, आप भगवान के बारे में आप जानते हैं, आप भगवान को आप मानते हैं, आप जानते हैं भगवान कौन है, अच्छा, तो आपको जानना चाहिए, तो आप बताइए भगवान को जानने के लिए क्या जरूरत है भगवान के जानने के लिए। आप जब आप अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान के जानने का भी इच्छा आपका होगा, है ना। तो आप ही बताइए, ये जानना, आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान कौन है अगर आप नहीं जानते हैं, तो क्या आपका जानना जरूरी है उनके बारे में? हाँ, क्या है, अब बताइए आप क्या बोल। ईश्वर क्या है? हाँ, ईश्वर, ये ईश्वर शब्द का अर्थ है मालिक। बैठिए, ईश्वर शब्द का अर्थ है मालिक। कोई भी बस जो, जैसे आपका मकान का ईश्वर कौन है? आपका मकान का ईश्वर कौन है? आपका मकान है, आपको मैं पूछ रहा हूं, आपका मकान है? मकान नहीं है, तो आपका कुछ क्या, क्या कुछ है आपको? अच्छा, सोचिए, जैसे जो मालिक है उसको ईश्वर कहा जाता है, परंतु जो सारे संसार के मालिक है, सब कुछ को मालिक है, वो है परम ईश्वर। भगवान है परम ईश्वर या परमेश्वर, क्योंकि सारे संसार के मालिक हैं वो। और तो आप, प्रश्न होता है सारे संसार के मालिक कौन है? जो सारे संसार को बनाया है और जो सारे संसार के पालन कर रहे हैं, तो ऐसे कोई है जो सारे संसार को बनाया है, सारे संसार का सृष्टि किया है? हाँ, है कोई? सारे संसार को कोई बनाया है, है ना, और वो संसार को पालन भी उन्होंने ही कर रहे हैं, वही है सारे संसार के मालिक या परम ईश्वर। जैसे इसका वर्णन हुआ है, भोक्ता रंग जग तपसाम सर्वलोको महेश्वरम। सारे संसार के मालिक हैं भगवान, क्योंकि सारे संसार को सृष्टि उन्होंने किए हैं, और वो है सारे संसार के भोग करने वाला, भोक्ता रंग जग तपसाम। और कोई प्रश्न है? प्राप्त किससे, कैसे किया जाए? देखिए, कोई भी विषय में आपको शिक्षा प्राप्त होना है तो एक शिक्षक का जरूरत होता है। ये आध्यात्मिक विषय का भी शिक्षा अगर आप प्राप्त होना चाहते हैं तो एक शिक्षक का जरूरत होता है। वो शिक्षक को कहा जाता है गुरु, और गुरु शिक्षा देते हैं ग्रंथ के माध्यम, है ना। गुरु किसके माध्यम शिक्षा देते हैं उस विषय पर कौन? हाँ, तो ये जो ग्रंथ है उसे शास्त्र कहा जाता है। तो गुरु ने शास्त्र के माध्यम ये शिक्षा देते हैं। तो गुरु कौन है? जिनको भगवान के बारे में ज्ञान है, वो है गुरु। तो आप अगर शिक्षा प्राप्त होना चाहते हैं तो ऐसे सही शिक्षक के पास आपको जाना पड़ेगा, और उसी उस विषय में ही कह रहा था कि इस्कॉन एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में क्या मिलता है? शिक्षक मिलता है, सिलेबस मिलता है, ग्रंथ मिलता है, और उसके अनुसार शिक्षा प्राप्त हो सकती है। तो वैसे अगर आप भगवान को, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि ये इस्कॉन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप बोलते हैं सकते हैं कि और कोई यूनिवर्सिटी में भी तो मैं जा सकता हूँ। हाँ ठीक है, परंतु मैं तो इस्कॉन का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि आपको अगर भगवान के बारे में जानना है तो इस्कॉन में ही आप एडमिशन लीजिए। इस्कॉन में आप में से कौन कौन एडमिशन ले चुके हैं, हाथ उठाइए कृपा करके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो लेने से कुछ फायदा हो रहा है आपको, कुछ शिक्षा मिल रहा है? क्या शिक्षा मिल रहा है आपको जुनेजा जी? कुछ फायदा हो रहा है? अच्छा, गिव द माइक्रोफोन लीजिए।
हरे कृष्ण। भगवान के बारे में जानने को मिला है, अपना उद्देश्य मालूम पड़ा है इस काम में कि अपना इस संसार में किस लिए आए हैं, और इसके अलावा आध्यात्मिक शांति मिली है।
अच्छा, बहुत धन्यवाद। और कौन हाथ उठाया था? शर्माना नहीं?
आत्मिक शांति मिलती।
हाँ,
आत्मिक शांति।
आत्मिक शांति इस्कॉन में। अच्छा, तो आप क्या केवल शांति प्राप्ति के लिए आए हैं?
परमात्मा को।
आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं क्या शांति के लिए जाते हैं, क्या जानने के लिए जाते हैं? हाँ, मैं तो बोलूंगा इस्कॉन में आने का उद्देश्य शांति की प्राप्ति नहीं केवल। इस्कॉन में देखिए, हमको तो शांति नहीं मिलता है, हमको बहुत अशांति मिलता है। क्योंकि जब बहुत सारे कार्य काम संभालना होता है तो शांति नहीं होता है। बहुत उलझन होता है, बहुत झंझट में होता है सारा। रात को सो भी नहीं सकते हैं कभी कभी। मैं तो बोलूंगा शांति के लिए इस्कॉन में नहीं आना, क्योंकि इस्कॉन में आने से शांति नहीं मिलेगा। आपको बहुत उलझन होगा, बहुत सारे काम। इस्कॉन में क्यों आने आएंगे? आनंद प्राप्ति के लिए। आनंद और शांति एक वस्तु नहीं है, है ना? शांति घर में बैठकर शांति मिल सकता है, पर जब आनंद प्राप्ति के लिए आप जाते हैं तो क्या करते हैं? पिकनिक में जाते हैं, है ना? आपको दोस्त लोग को बुलाकर सारे आयोजन करके आप जाते हैं, क्या या तो कोई पार्टी में जाते हैं, है ना? तो वैसे ही हमारे संस्थान का उद्देश्य केवल शांति प्राप्ति ही नहीं, हमारा संस्थान के उद्देश्य है आनंद प्रदान करने के लिए। हम कोई व्यक्ति अपना विशाल मकान में प्रासाद में बैठकर अकेला बैठकर वो शांति में रह सकता है, परंतु जब वो आनंद चाहता है तो क्या करते हैं? और बात को बुलाते हैं और उनके साथ जब वो भाव का आदान प्रदान होता है, उससे ही आनंद मिलता है। आप बताइए आपका क्या है? इस्कॉन में योगदान करने से क्या मिला आपको?
हरे कृष्ण। मेरे को यहाँ आने के बाद भगवत गीता का जो सही अर्थ है मालूम पड़ रहा, भगवत गीता क्या है। इसके अच्छा। पहले भगवत गीता ज्ञान मेरा बिल्कुल नहीं था।
अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवत गीता का सही अर्थ हमें अब पता चला। हाँ, यही बात है। देखिए, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है ग्रंथ, पुस्तक। जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्या होता है? कोई पुस्तक के माध्यम शिक्षा दिया जाता है। शिक्षक का गुण क्या है? जो विषय के विषय में उन्होंने शिक्षा देते हैं, उस विषय को बारे में समझाते हैं सही ढंग से। वही आप कह रहे हैं, विषय का ग्रंथ है भगवद गीता। और सही शिक्षक भगवद गीता का असल अर्थ समझाते हैं। तो मैं तो अब ये प्रश्न करूंगा आपको कि भगवद गीता समझने से, समझने के बाद क्या हुआ? आप तो बोल रहे हैं भगवद गीता के, भगवद गीता का अर्थ आप समझे हैं, तो समझने के बाद क्या हुआ?
उसके बाद मन में आनंद प्राप्त हो रहा है।
अच्छा ओके, भगवद गीता समझने के बाद मन में आनंद प्राप्त होता है, तो शांति नहीं मिला है। आनंद जो है, देखिए आनंद जो है वो शांति के परे है, शांति के परे है आनंद। तो जो परे है उसको, नीचे जो कुछ है वो सब उसमें है, उसके उसका अंतर्गत है। हा? जैसे आपका जेब में अगर 100 रुपया है तो उसका मतलब आपका जेब में 10 रुपया भी है। हा? तो आनंद सबसे परे है, मतलब उसके आनंद के नीचे जो कुछ है, शांति वगैरह जो कुछ है, वो अपने आप ही उसका प्राप्ति हो जाता है। और समझना ये चाहिए कि जो ये हमारे संस्थान का उद्देश्य क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि आपको भी पता चले कि हम यहाँ क्यों आए हैं और आप लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं। और देखिए अब तो प्रश्न होता है इसका जरूरत क्या है, भगवान के बारे में जानने के, जानने से फायदा क्या होता है? जरूरत है क्या भगवान के बारे में जानने से? जरूरत है भगवान के बारे में जानने का। जरूरत ये है कि हमारा ये भौतिक जगत में हमारा जो जीवन है, वो जीवन में बहुत कठिनाई है। ये इसलिए, इस कारण भौतिक जगत को दुखालयम कहा गया है, दुख प्राप्ति के स्थान। इस भौतिक जगत है ऐसी एक जगह जहां केवल कष्ट ही मिलता है। तो उस दुख का निवृत्ति के लिए, दुख का निवृत्ति के लिए कुछ उपाय का जरूरत होता है। कैसे हमारा कष्ट का निवृत्ति हो सकता है? तो कष्ट का निवृत्ति के जो असल उपाय जो है, ये है भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ना। भगवान के साथ हमारा संपर्क, भगवान से अलग हो जाने के कारण, भगवान से बिछोड़ जाने के कारण हम इस भौतिक जगत में गिरे हैं और यहाँ हमें ये सारे कष्ट मिल रहा है। तो भगवान से बिछोड़ने के कारण हमें यह कष्ट मिल रहा है, तो इस कष्ट का निवृत्ति कैसे हो सकता है? भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ने से। और भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से क्या होता है? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से ये भौतिक जगत का जितने उलझन है, जैसे एक बच्चा जब अपना पिता के हाथ पकड़ लेता है तब उसका और कोई परेशानी रहता है, वैसे ही हमारा सारे परेशानी का निवृत्ति होता है जब हम भगवान के शरण ले लेते हैं। इसलिए भगवान के ही शरण लेना चाहिए, भगवान के साथ संपर्क जोड़ना चाहिए, और संपर्क जोड़ने के पहले उनको पहचानना जरूरी है। उनको अगर हमें पता नहीं है भगवान कौन है, तो उनके साथ हम संपर्क जोड़ेंगे कैसे? इसलिए भगवान के बारे में शिक्षा का जरूरत होता है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की। इसलिए मैं एक ये भी सोच रहा हूँ कि शिक्षा, जब शिक्षा का सवाल जब पैदा होता है तब सिस्टमैटिकली उसको कल्टीवेशन होना चाहिए। तो हमारा तो यहाँ सुविधा सही रूप से नहीं है, भक्त का भी संख्या अधिक नहीं है, इसलिए हमारा अभी अभी कुछ तकलीफ होता है, कुछ असुविधा है, पर हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे हम सिस्टमैटिकली हम जो कुछ हम करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। मैं खुद भी यहाँ काफ़ी समय नहीं दे रहा हूँ, और वैसे सही ढंग से मैं ये भी बोलता हूँ कि केवल आके दो चार बातें करने में हमका मेरा ये नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि सिस्टमैटिकली कुछ काम हम करें, ताकि आपका भी उपकार हो और मेरा भी मन में प्रसन्नता हो। तो हम देख रहे हैं कैसे हम ये कर सकते हैं काम। हमारा कार्यक्रम यह अभी शुरू हो रहा है, लगभग एक साल हुआ है, तो फिर शुरू करने में भी कुछ समय लग रहा है। हरे कृष्णा। हाँ, आप लोग आइएगा और भगवान के साथ आपका संपर्क जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।